एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने सच में दुनिया भर में बहुत से लोगों की ज़िंदगी को छुआ है, शायद बदला भी है। एकहर्ट टॉले की द पावर ऑफ नाउ, मतलब वर्तमान की शक्ति।
हाँ, नमस्कार। और ये किताब मतलब आज के टाइम में तो मुझे लगता है और भी ज़्यादा रेलेवेंट हो गई है।
बिल्कुल।
ये जो हम सब महसूस करते हैं ना, एक लगातार दौड़, स्ट्रेस, ध्यान कहीं टिकता नहीं, तो ये किताब सीधा उन्हीं चीज़ों पर बात करती है।
हाँ।
और अच्छी बात ये है कि ये कोई सिर्फ फिलॉसफी नहीं है कि बस पढ़ लिया और भूल गए।
हाँ।
ये असल में जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका बताती है, शांति पाने का।
तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इसके जो मेन आइडियाज हैं, जो सबसे ज़रूरी बातें हैं, उन्हें समझें और ये भी देखें कि भाई हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में यहाँ इंडिया में इन्हें कैसे अपना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
हाँ, ज़रूर। तो शुरुआत लेखक से करें। एकहर्ट टॉले ये जर्मनी में पैदा हुए थे और अब एक स्पिरिचुअल टीचर के तौर पर जाने जाते हैं।
और दिलचस्प बात यह है कि ये किसी खास धर्म से जुड़े हुए नहीं है, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी पंथ या संप्रदाय से नहीं। लेकिन हाँ, उनकी बातों में आपको जैन बुद्धिज्म, सूफिज्म, इन सब की गहरी समझ की झलक जरूर मिलती है।
हाँ, और उनकी खुद की कहानी भी तो बड़ी ज़बरदस्त है। मतलब वो बताते हैं कि 29 साल की उम्र तक वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी से जूझ रहे थे।
बिल्कुल। और एक रात तो हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें लगा बस अब खत्म। और तभी उनके दिमाग में ख्याल कौन था, मैं अपने साथ और नहीं रह सकता।
बाप रे।
हाँ, और ये सुनते ही उन्हें झटका लगा कि अगर मैं अपने साथ नहीं रह सकता तो इसका मतलब यहां दो हैं, एक वो मैं है जो देख रहा है, जो अवेयर है,
चेतना।
हाँ चेतना, और दूसरा वो स्वयं जिसके साथ नहीं रहा जा रहा, यानी वो दुखी मन, वो ईगो।
और वहीं से सब बदल गया उनके लिए।
एग्जैक्टली, वो उनका टर्निंग पॉइंट था। उन्हें अपने विचारों के जाल से एक तरह की मुक्ति मिल गई। वो कहते हैं कि वो एक बहुत गहरी शांति में चले गए जिसे शब्दों में बताना भी मुश्किल है।
और शायद यही वजह है कि उनकी बातें इतनी असरदार लगती हैं। वो किताबी ज्ञान नहीं दे रहे।
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो अपने अनुभव से बोल रहे हैं। वो थ्योरी नहीं पढ़ा रहे, बल्कि वो जिस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में रहते हैं उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसीलिए ये किताब इतनी सच्ची और प्रैक्टिकल लगती है।
तो ये किताब असल में है किसके लिए? क्या ये सबके लिए है?
देखिए, मेरे ख्याल से ये उन सबके लिए है जो जिंदगी की इस भागदौड़ से थोड़ा परेशान हैं, या जिन्हें बहुत चिंता रहती है, बेचैनी होती है,
या शायद वो लोग जो सोचते हैं कि जिंदगी में सिर्फ ये सोचना, महसूस करना, इसके अलावा भी कुछ गहरा होना चाहिए।
हाँ बिल्कुल। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो बहुत साफ है कि हमारी जो ज्यादातर तकलीफें हैं, स्ट्रेस, गुस्सा, दुख, वो इसलिए हैं क्योंकि हम अनजाने में अपने मन और अपनी ईगो वाली पहचान से पूरी तरह चिपक गए हैं।
मतलब हम सोचते हैं कि हम वही हैं जो हमारा मन कहता रहता है।
हाँ, और मन क्या करता है, या तो वो हमें पुराने पछतावों में उलझाए रखता है
कि अरे ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों कहा,
या फिर भविष्य की चिंताओं में, कल क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो। टॉले कहते हैं कि ये दोनों ही पास्ट और फ्यूचर असल में है नहीं, वो सिर्फ मन की कहानियां हैं।
तो फिर असली क्या है?
असली है सिर्फ ये पल, अभी, द नाउ। यही वो अकेली चीज है जो हमारे पास सच में है। पास्ट तो यादें हैं, फ्यूचर कल्पना। जिंदगी का अनुभव तो सिर्फ सिर्फ अभी में होता है।
और जब हम इस अभी में टिकना सीख जाते हैं
तो हम अपने गहरे असली स्वरूप से जुड़ते हैं, जिसे टॉले बीइंग या होना कहते हैं। मतलब विचारों के परे एक शांति, एक ठहराव। ये किताब बस इसी रास्ते पर ले जाती है। हमें सिखाती है कि अपने ईगो के खेल को कैसे पहचानें और उससे ऊपर कैसे उठें, अक्सर सवाल जवाब के फॉर्मेट में।
चलिए तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। किताब के कुछ खास अध्यायों या कॉन्सेप्ट्स पर बात करते हैं। शायद सबसे पहले तो यही आता है, आपका मन नहीं है, है ना?
हाँ, ये तो मतलब बुनियाद है पूरी किताब की। यू आर नॉट योर माइंड। टॉले कहते हैं कि सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि हमने मान लिया है कि हम अपने विचार हैं। जो भी ख्याल आया, लगता है ये मैं हूं।
यहीं से गड़बड़ शुरू होती है।
हाँ,
और इसका तोड़ वो बताते हैं विचारक को देखना, वॉचिंग द थिंकर। मतलब अपने दिमाग में जो विचार चल रहे हैं ना, उन्हें बस देखो दूर से, जैसे जैसे आप ट्रैफिक को देख रहे हो। जज मत करो कि ये अच्छा है, ये बुरा है, बस देखो।
सुनने में आसान लगता है पर मन तो चुप ही नहीं होता। हाँ, शुरू में तो लगता है कि कैसे होगा, लेकिन कमाल की बात यह है कि जैसे ही आप ये कोशिश शुरू करते हैं देखने की, एक दूरी बनने लगती है। आपको पता चलता है कि अरे, एक मैं है जो देख रहा है और एक मन है जो सोच रहा है, ये दो अलग चीजें हैं।
और यही फर्क समझना आजादी है।
हाँ, ये पहला कदम है। फिर एक और बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, पेन बॉडी का, दर्द शरीर।
हाँ, ये सुनने में थोड़ा डरावना सा लगता है, पेन बॉडी, ये क्या चीज है?
हाँ, नाम थोड़ा वैसा है पर आइडिया बहुत गहरा है। देखिए, पेन बॉडी क्या है? वो हमारे अंदर इकट्ठा हुआ पुराना इमोशनल दर्द है। बचपन की कोई चोट, कोई पुराना दुख, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, जो हमने उस वक्त पूरी तरह महसूस नहीं किया, दबा दिया।
अच्छा,
तो वो एक तरह की नेगेटिव एनर्जी बनकर हमारे अंदर सोया रहता है।
और
फिर कोई बाहरी चीज, किसी की बात, कोई घटना उसे ट्रिगर कर देती है और ये पेन बॉडी जाग जाता है और फिर ये हम पर हावी हो जाता है। अचानक हमें बेवजह गुस्सा आने लगता है या हम दुखी हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं।
हाँ, होता है ऐसा कभी कभी।
बिल्कुल। और ये पेन बॉडी नेगेटिविटी पर पलता है, ये हमें और नेगेटिव सोचने पर मजबूर करता है, एक दुष्चक्र बन जाता है।
तो इससे निपटें कैसे, लड़ें इससे?
नहीं, टॉले कहते हैं लड़ने से तो ये और ताकतवर होता है। इसका इलाज है अवेयरनेस, जागरूकता। जब भी ये पुराना दर्द उठे या कोई तेज नेगेटिव इमोशन आए, उसे पूरी तरह महसूस करो, देखो उसे, लेकिन उससे अपनी पहचान मत जोड़ो। ये मत सोचो कि मैं दुखी हूँ, सोचो मेरे अंदर दुख की एक पुरानी एनर्जी जगी है।
अच्छा, मतलब साक्षी भाव से देखना।
बिल्कुल। आपकी जो जागरूकता है, जो देखने की शक्ति है, वो रोशनी की तरह है और ये रोशनी धीरे धीरे इस पेन बॉडी के अंधेरे को कम कर देती है, उसे पिघला देती है।
ये बहुत पावरफुल आइडिया है। अच्छा, अब आते हैं किताब के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर, अभी की शक्ति, द पावर ऑफ नाउ। टॉले घड़ी के टाइम और साइकोलॉजिकल टाइम में फर्क करते हैं।
हाँ, देखिए, घड़ी का टाइम तो जरूरी है अपॉइंटमेंट के लिए, काम के लिए, ठीक है, लेकिन साइकोलॉजिकल टाइम क्या है? वो है हमारे मन का लगातार पास्ट और फ्यूचर में घूमते रहना। टॉले कहते हैं कि हमारी लगभग सारी पीड़ा, सारा दुख इसी साइकोलॉजिकल टाइम में जीने से आता है। गिल्ट पास्ट में है, एंग्जाइटी फ्यूचर में,
जबकि जिंदगी तो सिर्फ इसी पल में है, अभी।
एग्जैक्टली। टॉलेट बड़ा सिंपल सा सवाल पूछने को कहते हैं, जब भी हम परेशान हों, ठीक इसी पल, राइट नाउ, मुझे क्या प्रॉब्लम है?
और ज्यादातर बार जवाब शायद यही होगा कि अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बिल्कुल। प्रॉब्लम या तो किसी बीती हुई बात की याद है या आने वाले कल की चिंता। इस पल में अक्सर सब ठीक होता है, सांस चल रही है, हम यहां हैं।
तो इस अभी में टिके कैसे, मन तो भागता रहता है।
हाँ, भागता है। तो टॉले एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, अपने इनर बॉडी यानी आंतरिक शरीर से कनेक्ट करना।
आंतरिक शरीर, वो कैसे?
इसका मतलब है अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अपने शरीर के अंदर ले जाना, अपने हाथों को महसूस करना, पैरों को, पेट को, पूरे शरीर में एक हल्की सी एनर्जी, एक वाइब्रेशन, एक जिंदा होने का एहसास महसूस करना।
अच्छा, जैसे अपने हाथ में जो हल्की झंझनाहट होती है उसे महसूस करना।
हाँ, बिल्कुल। या अपनी सांस को महसूस करना। ये हमें क्या करता है? ये हमें फौरन हमारे विचारों की जो लगातार बकबक चलती रहती है उससे बाहर खींच लाता है। हम सोचने के बजाय महसूस करने लगते हैं।
और शरीर तो हमेशा प्रेजेंट में ही होता है।
सही कहा, शरीर कभी पास्ट है, फ्यूचर में नहीं होता। तो ये अभी में टिकने का, ग्राउंडेड होने का एक सीधा रास्ता है। इससे शांति मिलती है, ठहराव आता है।
किताब में रिश्तों पर और सरेंडर यानी समर्पण पर भी बात है। रिश्तों के बारे में क्या खास कहते हैं टॉले?
वो कहते हैं कि ज्यादातर रिश्ते जो हम देखते हैं वो ईगो पर टिके होते हैं। मतलब हम दूसरे से कुछ चाहते हैं, प्यार, वैलिडेशन, सिक्योरिटी, या हम उसे बदलने की कोशिश करते हैं।
हाँ, ये तो होता है।
तो टॉले इनलाइटेंड रिलेशनशिप की बात करते हैं, वो रिश्ता जहां आप दूसरे से कुछ पाने या उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, आप बस अपनी प्रेजेंस में, अपनी जागरूकता में टिके रहते हैं और दूसरे को भी उसकी प्रेजेंस में स्वीकार करते हैं।
मतलब बिना किसी उम्मीद के।
हाँ, एक तरह से सच्चा कनेक्शन, सच्चा प्यार, वो इसी साझा प्रेजेंस से, इसी ठहराव से पैदा होता है, ना कि जरूरतों और उम्मीदों से।
और सरेंडर, समर्पण, इसका मतलब क्या हार मान लेना है कि बस अब कुछ नहीं कर सकते?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। टॉले के लिए सरेंडर का मतलब है जो है उसे अंदर से स्वीकार कर लेना, जीवन का जो फ्लो है उसके साथ लड़ना बंद कर देना।
मतलब रेजिस्ट ना करना।
एग्जैक्टली। अंदरूनी तौर पर हाँ कह देना। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्शन नहीं लेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप बिना नेगेटिविटी के, बिना फ्रस्ट्रेशन के एक्शन लेंगे। ये कमजोरी नहीं है, ये गहरी समझदारी है। जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं तभी हम समझदारी से अगला कदम उठा पाते हैं।
तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो कुछ मेन मैसेजेस क्या निकल कर आते हैं? पहला तो शायद यही कि हमारा असली दुश्मन हमारा अपना अनकंट्रोल्ड मन है।
हाँ बिल्कुल, ये जो लगातार सोचने वाला, जज करने वाला मन है और उससे जुड़ी हमारी ईगो वाली पहचान, ज्यादातर दुख वहीं से आता है। इस पहचान को तोड़ना ही फ्रीडम है।
दूसरा ये कि पास्ट और फ्यूचर में जीना एक तरह का इल्यूजन है ना? जिंदगी तो बस अभी में है, सारी पावर सारी शांति इसी पल में है।
एकदम सही। तीसरा वो जो पेन बॉडी की बात की थी, मतलब हमारे अंदर का पुराना इमोशनल दर्द, उसे पहचानना और जागरूकता से उसे डिसॉल्व करना मुमकिन है। हम अपने पास्ट के बोझ से मुक्त हो सकते हैं।
और चौथा शायद समर्पण यानी एक्सेप्टेंस। ये वीकनेस नहीं विजडम है।
हाँ, जो चीजें बदल नहीं सकती उनसे लड़ने में एनर्जी वेस्ट करने के बजाय उन्हें स्वीकार करने से पीस मिलती है और फिर सही एक्शन लेने की क्लैरिटी भी आती है। सोचिए ना, जैसे दिल्ली के ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, अब चिल्लाने से या फ्रस्ट्रेट होने से तो ट्रैफिक हटेगा नहीं।
सही बात है।
तो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना और शांत रहना, यही सरेंडर है। शायद आप कार में कोई अच्छा म्यूजिक सुन लें या बस अपनी सांस पर ध्यान दें।
हाँ, या ऑफिस में मान लीजिए बहुत प्रेशर है तो आगे क्या होगा, इस चिंता में डूबे रहने के बजाय क्या हम बस उस एक ईमेल पर फोकस कर सकते हैं जो अभी लिखना है?
बिल्कुल, यही है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। ये छोटे छोटे बदलाव हमें रोज की जिंदगी में ज्यादा शांत और
इफेक्टिव बना सकते हैं।
इस किताब में ना कुछ कोट्स बहुत जबरदस्त हैं जो एकदम हिट करते हैं।
हाँ है, जैसे एक है, गहराई से महसूस करें कि वर्तमान क्षण ही वो सब कुछ है जो आपके पास कभी होता है। अभी को अपने जीवन का प्राथमिक केंद्र बनाएं। कितनी सीधी पर कितनी गहरी बात है ना? ये वाकई सोचने पे मजबूर करती है कि हम अपना जीवन कहाँ जी रहे हैं, असलियत में या ख्यालों में। एक और जो मुझे बहुत पसंद है, स्वतंत्रता की शुरुआत ये एहसास है कि आप वो सत्ता नहीं है जो सोचती है, यानी विचारक। जिस क्षण आप विचारक को देखना शुरू करते हैं, चेतना का एक उच्च स्तर सक्रिय हो जाता है।
हाँ, देखने वाली बात, ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ये सच में क्रांतिकारी है।
और वो छोटी सी लाइन, दर्द अपरिहार्य है, पीड़ा वैकल्पिक है, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल।
बिल्कुल, मुश्किलें तो आएंगी, चोट भी लगेगी, लेकिन अब उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, कितना दुखी होते हैं, वो हमारे हाथ में है। पीड़ा अक्सर हमारे रिएक्शन से, हमारे रेजिस्टेंस से पैदा होती है।
सही कहा, ये हमें अपनी चॉइस याद दिलाता है। अच्छा, अब सबसे जरूरी बात, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसे अपनी लाइफ में लाएं कैसे, प्रैक्टिकली क्या करें?
हाँ, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। देखिए, चिंता और स्ट्रेस के लिए सबसे कारगर तरीका है अपना ध्यान फ्यूचर से हटाकर अभी जो कर रहे हैं उस पर ले आना। जैसे अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और डर लग रहा है
कि फेल हो गए तो?
हाँ, तो उस डर के बारे में सोचने के बजाय अपना पूरा फोकस सिर्फ उस चैप्टर पे लगाइए जो अभी पढ़ रहे हैं। बस एक पेज, एक बार में एक कदम।
और रिश्तों में मान लीजिए किसी से कहा सुनी हो गई,
उस वक्त अपना पॉइंट प्रूफ करने या जीतने की कोशिश करने से पहले क्या हम एक सेकंड रुककर सच में सुन सकते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है?
मुश्किल है पर हाँ।
और जब हमें खुद गुस्सा आए या चोट लगे तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय क्या हम बस एक पल के लिए अपनी उस फीलिंग को देख सकते हैं कि हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है? ये प्रैक्टिस ईगो को या पेन बॉडी को हावी होने से रोकती है, इससे ज्यादा समझदारी से बात हो पाती है।
और रोजमर्रा की छोटी चीजों में भी तो ये कर सकते हैं, है ना?
बिल्कुल, जैसे सुबह चाय पी रहे हैं तो बस चाय पिएं, उसका टेस्ट, उसकी गर्माहट महसूस करें, टीवी देखते हुए या फोन स्क्रॉल करते हुए नहीं।
हाँ, या चलते वक्त बस अपने कदमों पर ध्यान देना, हवा को महसूस करना।
सही, ये छोटे छोटे पल हैं अभी में आने के, इनमें एक शांति है, एक खुशी है जो हम अक्सर मिस कर देते हैं। काम करते वक्त भी जब हम पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं तो हम ज्यादा फोकस्ड होते हैं, गलतियां कम होती हैं और काम बोझ नहीं लगता, वो फ्लो स्टेट में आ जाते हैं।
मेरे लिए तो इस किताब की सबसे बड़ी बात यही जानना थी कि मेरे दिमाग में जो ये हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है ना, वो मैं नहीं हूँ।
हाँ,
मैं उससे अलग हूँ, मैं उसे देख सकती हूँ। ये जानना ही बहुत फ्री करने वाला एहसास है।
बिल्कुल, और मेरे लिए शायद वो समर्पण और स्वीकारता वाला आइडिया कि हर चीज से लड़ना नहीं है, कभी कभी बस एक्सेप्ट कर लेना, उसमें ज्यादा शांति और ताकत है, ये समझना एक बड़ा शिफ्ट रहा है।
तो श्रोताओं के लिए क्या हम कोई एक छोटा सा टेक अवे या एक्सपेरिमेंट छोड़ सकते हैं?
हाँ बिल्कुल, एक छोटा सा प्रयोग। आज से या कल से, जब भी याद आए, बस एक दिन के लिए कोशिश करें, अपने विचारों को सिर्फ देखें, जैसे वो आते जाते बादल हों, उनमें उलझे नहीं, उन्हें जज ना करें, बस नोटिस करें कि मन क्या कर रहा है, सिर्फ देखें और देखें कि कैसा महसूस होता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।